ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कहाँ गया लड़का यहाँ पे? दामोदरष्टकम काज सातवां श्लोक पर हम लोग विचार करेंगे। कुबेरा आत्मजौ बद्धा मूर्ता एवा यत्यता त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदर इह। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्ता यदा त्वं त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तय वदा त्वं त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमस्ति दामोदरेह। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तयद्वत्त्वं त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। अनुवाद। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है वो आपने माता जसोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुबर जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है और किसी प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः ईमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमूषु पुरुषम् भुक्ते गुणां षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ट भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे व्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग नारद जी के अनुग्रह से कार्तिक महीने में वृंदावन वास कर रहे हैं और यह कथा सुन रहे हैं। मैं वैष्णव महाराज और आप वैष्णव से प्रार्थना करूंगा, कृपा करें कि हम भी इसे कुछ समझ सकें, क्योंकि करीब 8-10 दिन से मीटिंग चल रहा था तो पूरे दिमाग में गोल मीटिंग ही है। ये भागवतम आने में थोड़ा देर लगेगा। लेकिन धर्मात्मा प्रभु ने कल कहा और उन्होंने कहा कि भागवतम से बोलेंगे या दामोदर अष्टकम से। मैं कहा आप जो कहोगे। तो उन्होंने हमको ये 7वां श्लोक दिया। बड़ा ही उचित यह श्लोक है। भागवत महापुराण के 10वां स्कंद के 9 और 10 ये दामोदर अष्टकम में ये दोनों अध्यायों का सारांश दिया गया है। एक तरह से यह लीला क्यों हुई उसका यहां पर विशद वर्णन किया गया है। जैसे पहला श्लोक में बताया गया है कि माता यशोदा ने आपको उखल में बांधा था, इसलिए उनका नाम पड़ा था दामोदर। दाम उदर, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, जिनका पेट बंधा हुआ था उखल में। मैया को क्या पड़ा कि वो उखल में बांधे। बहुत कुछ सामान था बांधने के लिए, उखल में ही वो केम बांधी। रस्सी से हाथ पैर बांध सकती थी, पेड़ में बांध सकती थी, खाट में बांध सकती थी, उखल में ही क्यों बांधा। तो आचार्य कहते हैं कि खल का मतलब होता है बदमाश, खल आदमी है, बदमाश है। तो कृष्ण ने बदमाशी किया था। और बदमाशी क्या किया था कृष्ण? और बताइए, सोचिए। मटकी तोड़ दिया था, वो उतना अपराध नहीं था, ठीक है, घर में है, तोड़ दिया है। माँ को परेशान किया तो माँ को अच्छा लग रहा था, बच्चे माँ को परेशान करते, माँ बोलती है परेशान कर रहा है, वो तो आनंद होता है माँ को। गलती क्या किया था? हाँ, चोरी किया था, यह बात ना। तो आजकल तो चोरी करना फैशन हो गया है ना, जो चोरी नहीं करता है तो कहते हैं कैसा आदमी है। आजकल चोरी करना फैशन हो, डकैती करना तो और बड़ा फैशन है, चाहे कर का चोरी करे चाहे कोई भी चोरी करे। पहले चोरी करना पाप था, हम लोग सुने हैं, कई एक बार बताया हूँ, कहते थे बचपन से पढ़ाया जाता था झूठ बोलने के विषय में, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तुम्हारा बाप है, कहते थे ना। तो बचपन सिखाया जाता था, और चोरी करना बहुत बड़ा जघन्य अपराध था। कोई किसी को कह दे कि तुम्हारा बेटा चोर है, बाप रे बाप, गांव में झगड़ा लग जाएगा। कह दो कि तुम्हारा बाप चोर है, बेटा चोर है, तुम चोर है, देखो क्या हो जाता है। तो कृष्ण चोरी किए थे, और जो चोरी करता है, पहले तो लोग कैद खाना में, जेल में जाता था कैद में। तो इसलिए मैया ने कहा कि चोरों को दंड बंधन होता है, बांधना चाहिए। तो सोचा मैया कि अब बांधू कहाँ, चोर जो चोरी करता है वह तो पाप है ही, लेकिन जो चोर में सहायता करता है वह भी पापे करता है। तो कृष्ण को चोरी करने में सहायता किया था वह उखल। तो मैया ने सोचा कि मेरा लात बड़ा अच्छा है, किसी चीज की कमी घर में है नहीं, तो ये चोरी करे क्यों? क्योंकि इसका संग हो गया था इस उखल से, और ये संग का प्रभाव है, संग से गुण होता है, संग से गुण जात, ये संगत का प्रभाव है। इसलिए हम लोगों को चुनना चाहिए कि हम कैसा संग कर रहे हैं, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हमें संग चुनना चाहिए। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति उपदेशामृत में संग का महिमा बताते हैं, भक्ति यदि वृद्धि करनी है तो संग चुनना चाहिए। उत्साह निश्चयाधर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। संग त्यागो यानी जो जिनकी भक्ति में मति नहीं है उनका संग त्याग देना चाहिए, और साधुओं का संग करना चाहिए, जहाँ भी प्राप्त हो सके साधुओं की संगति। ये वृंदावन में आए हैं कार्तिक महीने में, तो यथासंभव हो सके साधुओं का संगति करें, वो घर का गृहस्थी का इधर का उधर का बात न करें, व्यर्थ समय न बिताएं। तो संग बहुत जरूरी है, और हम लोगों को इस अवसर मिला है श्रील प्रभुपाद जी कृपा से इस संग प्राप्ति करने के लिए, साधुओं के संगति। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। संगति से बहुत कुछ प्राप्त होता है, श्रद्धाम श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। संगति से भगवान में सुदृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होता है, भगवत प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो संग करना चाहिए, हम लोग को सोचा मिला है संग करना चाहिए। यदि उचित संग ना हो तो हम लोग बर्बाद हो सकते हैं, हमारी भक्ति बर्बाद हो सकती है, और बहुत बहुत जन्मों के बाद ये भक्ति मिली हुई है। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लता बीज। इस भक्ति लता बीज का हमें सिंचन करना चाहिए। इस प्रकार से हम वृक्ष लगाते हैं तो पहले पानी डालते हैं, घेराव करते हैं, और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तब ज़्यादा घेराव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, फल देता रहता है। ठीक वैसे ही हम लोगों को अपने भक्ति का रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यह समय है जहाँ पर हम लोग इमोशनल स्टेज पर हैं। इमोशनल स्टेज पर क्या सही है और क्या गलत है इसका पता नहीं चलता है। लेकिन जब धीरे धीरे शुद्ध भक्तों की संगति से हम भक्ति में लगे रहेंगे तो इमोशनल स्टेज से डिवोशनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे, और जब डिवोशनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे तब हम समझ सकते हैं क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन आज के दिन वो नहीं है, इसलिए हम लोगों को चाहिए यथास संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्तों का संगति करना चाहिए, प्रभुपाद जी का संगति करना चाहिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, इस प्रकार से हम अपने भक्ति को प्रौढ़ बनाएं। तो संघ बहुत जरूरी है। तो मैया ने सोचा कि उखल का ये संघ किया है इसीलिए यह खल हो चुका है, इसीलिए मैया ने उनको उखल में बांधा। लोहा को लोहा काटता है, तो ऐसे ही इनके खलता को खत्म करने के लिए मैया ने उखल में बांधा ताकि इनकी खलता खत्म हो जाए। तो यह लीला आज के दिन हुआ था, दीपावली के समय ही, दीपावली के दिन। एकदा गृहदासीषु यशोदा आनंद गेहिनी कर्मांतर नजिक्तासु निर्मंथन स्वयं दधि। एकदा, एक समय की बात है, एक दिन की बात है, मैया यशोदा के पास बहुत सी उलाहनाएं आया करती थी कृष्ण के विषय में। तो उन्होंने निर्णय किया कि हो सकता है कि बहुत से दास दासियां हैं जो कि सेवा करते हैं, मक्खन निकालते हैं, शायद वो मक्खन कृष्ण को अच्छा न लगता हो, इसलिए मैया ने निर्णय किया कि आज मैं स्वयं मक्खन निकालूंगे। स्वयं कर्मांतर निजुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधि, स्वयं मैं निकालूंगी। आजकल हम लोगों को आदत पड़ गई है होटल का खाने का, होटल के खाने में वह स्वाद नहीं है जो माँ के हाथ का बना हुआ खाना हो, बहन के हाथ का बना खाना हो, पत्नी के हाथ का बना खाना हो, जो घर में का बना हुआ खाना हो। जब होटल का खाना खूब स्वादिष्ट होता है तो लोग कहते हैं तो घर के खाने के समान है, और दुष्ट लोग एक दिन भी हो घर में नहीं खाए हैं फिर भी कहते हैं कि घर के खाने के समान है, सुने हैं। तो घर का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, माँ के हाथ का बनाया हुआ। तो मैया यशोदा ने निर्णय किया कि आज मैं स्वयं दधि मथूंगी कृष्ण के लिए। आप लोग वह कथा सुन चुके हैं कि किस प्रकार से मैया यशोदा मक्खन निकालने गई और फिर क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। अंत यही हुआ कि सुबह से काम शुरू हुआ था, मक्खन निकालने का काम 4:30 बजे शुरू हुआ था, मंगल आरती के समय यशोदा मैया मंगल आरती कर रहे थे। यानी यानी हगीतानी तद बालक चरितानी च तदि निर्मंथन काले तान स्मरण गायत। जो जो भगवान की लीलाएं थी उनका गायन करते हुए मैया मथनी मह रही थी। लेकिन कृष्ण को जब पकड़ना हुआ तो पकड़ते पकड़ते पूरे दिन, पकड़ तो ली लेकिन जब बांधना हुआ तो पूरा दिन लग गया, ऑलमोस्ट शाम होने हो गया। तो घर में और भी काम था तो मैया ने सोचा कि चलो इसको बांध करके घर का काम और सब देख लेती हूँ, दास दासियों ने क्या किया है, और मक्खन में निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको मना लूंगी लाला को। आनंद वृंदावन चंपू में बहुत सुंदर इसका वर्णन है, कृष्ण और यशोदा मैया के बीच में जो वार्ता हुआ है उसका। एनीवे मैया अब बांध दी कृष्ण को, शाम का समय हुआ। आप में से कितने लोग गांव के हैं? सब लोग गांव के हैं ना, नहीं नहीं भूल गया बोलना, कितने लोग शहर के हो? ये सही, चलो मैं गांव का कथा बता रहा हूं शहर वालों को समझने के लिए। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो पढ़ने जाते थे, किसी बच्चे से पूछो पढ़ना उसके आनंद का विषय नहीं होता है, बच्चों के लिए खेलना आनंद का विषय होता है। तो जोर जबरदस्ती तो माँ बाप भेज देते पढ़ने के लिए, पढ़कर गए, अब 5 बजा जब आए घर पर तो किताब फेंके, उधर चलो खेलने के लिए, खेलने में आनंद आता है। तो शाम का समय हो गया था, ये बच्चों का समय और मच्छरों का समय होता है, शाम का समय मच्छर भी आते हैं ना शाम के समय, तो बच्चों का समय होता है, खेलने का समय होता है। सब ग्वाल बाल लोग आए तो देखे तो कृष्ण बड़े विपट परिस्थिति में थे, बंधे हुए थे, अब खेलने का समय था। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो लीला परक कार्य करते हैं, कुछ न कुछ लीलाएं ही करते हैं भगवान। जब देखे ग्वाल बाल लोग तो कृष्ण को टीज करने वाले भी कुछ ग्वाल बाल लोग थे, मधुमंगल मनसुखा ये सब मजाक करने वाले थे, कहा देखो कृष्ण तुम्हारे चलते हम लोग कई एक बार मार खाए हैं, अच्छा हुआ आज तुम पकड़ा गया है, तो हंसी मजाक हो रही थी। तो उसमें से कुछ लोग नर्म सखा थे तो उन्हें बड़ा दुख लग रहा था यह देख करके कृष्ण बांधे हुए हैं, तो बेचारे खोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन खोल पा नहीं रहे थे, क्योंकि जो बंधन था वह मैया यशोदा के द्वारा किया गया था, मैया ने बांधा था, और मैया जो है वह वात्सल्य भाव में है और सखा लोग सख्य भाव में है, तो वात्सल्य भाव का बंधन सख्य भाव से नहीं खुल सकता है। तो कितने सखाओं को बड़ा दुख लग रहा था, कहा कि कृष्ण तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं कर रहा है ना, तो कृष्ण कहा नहीं बिल्कुल मैं ठीक हूं, चलो चलते हैं खेलने के लिए। तो कृष्ण उस दिन बैलगाड़ी का लीला करना चाहे, वो जो उखल था वो गाड़ी बन गया और कृष्ण बन गए बैल। तो कृष्ण कहे चलो हम चलते हैं खेलने के लिए, तो कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में गए। अब ये दो वृक्ष थे, इन दो वृक्षों को देखे भगवान कृष्ण। अब यह श्लोक पर हम आ रहे हैं, ये दो वृक्ष थे कौन, यहां पर सप्तव्रत मुनि कह रहे हैं कुबेर आत्मजौ, एक कुबेर के संतान थे। इन लोगों का नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। कुबेर लोकपाल हैं, देवताओं के ट्रेजरर हैं। इनके जो दो पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव, एक भक्त कहते हैं कि इन लोगों के पास धन तो खूब था लेकिन देखने में बड़े खराब थे, कुरूप थे। इनका नाम था कुबर, कुबर मतलब खराब। और ये कैसे थे, एक था नल कुबर, नल समझते हैं ना टोटी पानी वाला, हंच बैक मतलब पीछे बाहर निकल जाता है टेढ़ा हो जाता है, तो एक तो नल कुबर था, नल के समान था, और दूसरा था मणिग्रीव जिसके गले में कंठी वाला नहीं मणि, कितने लोगों का गला बड़ा हो जाता है ना, को हाथी पैर वाले हो जाते हैं, बड़ा पैर हो जाता है, यहां पर लटक जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, लोग सुंदर थे, देवता के पुत्र थे, तो धन था ही। मद के माता कुंती कहती 4 स्थान है जहां पर मद निवास करता है, जन्म ईश्वर ज श्रुत श्री भी एधमान अदभमान, ये मद के स्थान है, उच्च कोटि में जन्म लेना, तो उच्च कोटि में जन्म लिए थे, देव कोटि में देव पुत्र थे, कुबेर के बेटे थे, यक्ष के पुत्र थे, जन्म ऐश्वर्य धन का कमी नहीं था, श्रुता पढ़ने लिखने में लोग कोई चलाक नहीं थे, सब बाप मां चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लें पढ़ लिख लें, यक्षराज कुबेर भी चाहते थे कि ये लोग पढ़ लिख लें, लेकिन बदमाश थे, इन लोगों को पढ़ने मन लगता नहीं था। एक दिन कुबेर जी आए कैलाश पर, कैलाश पर्वत, और भगवान शिव से उनकी दोस्ती थी कुबेर जी की। कुबेर जी भी जाते थे कभी कभी कथा सुनने के लिए। तो भगवान शिव के पास कहे कि देखिए हमारे दो बच्चे हैं, ये पढ़ते नहीं आता, और ट्यूशन करा दीजिए इन लोगों को। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुबेर जी भेज दिए अपने बच्चे को, नलकुबर को, मणिग्रीव को। भगवान शिव इधर पढ़ा रहे हैं, सब ऋषि लोग हैं। आप जानते होंगे दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक भोदे होते हैं, भोदे मतलब क्या, भोदा क्या कहते हैं, डल, तो अंग्रेजी बोल दिया ना, हिंदी क्या होगा, मंद बुद्धि वाला, जिसको पढ़ने में बच्चा नहीं लगता है, भोदे कहलाते हैं। और एक चतुर बच्चे होते हैं, जो चलाक लड़के होते हैं, पढ़ने में वो आकर पहले बैठते हैं, पता है ना। और जो भोदे होते सबसे पीछे बैठते हैं, वो भागवतम क्लास में मैं देखा हूं ऐसे, जिनको बीच में ही उठकर जाना होता है पीछे बैठते हैं, जिनको सुनना होता आगे बैठते हैं। तो ये लोग सबसे लास्ट वाला बेंच में बैठते थे, नलकुबर और मणिग्रीव। और भगवान शिव तो आंख बंद कर कथा सुनाते थे, कब उनका आंख बंद हुआ, चल पड़े वहां से, भोदे थे, उनको पढ़ने में तो मन लगता नहीं था। बेचारा बाप बड़ा परिश्रम किया पढ़ाने के लिए, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। ये लोग करते क्या थे, तो स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाते थे और विहार करते थे। धन जब हो और धन का सदुपयोग कृष्ण सेवा में न किया जाए, तो ये चार पापों में धन लोग लगाते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, दूतपान और कौन बाकी रह गया, नशा। तो उसमें से एक ये लोग चुने थे, और वह था प्राय स्त्रियों का संग। तो वे लोग क्लास छोड़ करके और जा करके गंगा जी को अपवित्र करने का प्रयास करने लगे। मंदाकिनी में गए और वहां पर स्वर्ग के अप्सराओं के साथ में खिलवाड़ करने लगे, वो भी नंग धड़ंग होकर के। तो नारद जी आ रहे थे, भगवत कृपा थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के यदृक्षया, भगवत कृपा से। नारद जी को क्या पड़ा था उधर से जाने के लिए, साधु महात्मा। और अभी जब देखे कि जहां लड़के और लड़कियां सब नहा रहे हैं, तो साधु को उधर क्या जाने का, साइड से चले जाते हैं। लेकिन नहीं, ये भगवत कृपा थी, इसलिए यदृक्षया शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है। भगवत कृपा से नारद मुनि वहीं से आ रहे थे, जब देखे नारद जी इन दोनों को और ये लोग भी देखे, तो नारद जी तो पहले कहते हैं, यदृक्षया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्य नारदो दैव क्षीबाणो समबुद्धयत। ये लोग छिबाणो नशा में जुक्त थे, एक तो बंदर और ऊपर से उन्हें शराब पिला दिया जाए, इसका हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। एक यहाँ डिवोटी था लघु केशव, पता नहीं है कि नहीं, कहाँ है वो। जब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था तो उन्होंने का ऑफिस यहाँ हुआ करता था ऊपर आए, शाम को बंदर बड़े परेशान करते थे। तो लघु केशव ने हमसे कहा, वो भी बंदरे जैसा है, पता नहीं आजकल कहाँ रहता है, कहा प्रभु जी आपको मैं एक बात बताऊं। कहा हाँ बताओ, क्या बात। कहा देख रहे हैं बंदर ना, गर्मी का दिन था, बड़े परेशान करते थे। कहा कि इन लोगों को शराब बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा तू पागल है क्या। कहा कि नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो सही में शराब का एक पाउच लेकर के आया और एक कटोरी में वहां पर डाल दिया, और वो लोग पी लिए, और पीने के बाद में देखिए वे क्या कर रहे थे। तो एक तो बंदर ऊपर से शराब पी ले, तो उदाहरण था लेकिन मैं देखा था। एनीवे, तो एक तो कुबेर के बेटे और ऊपर से नशा में जुग थे। नारद जी इन लोगों को देखे, अपश्यन नारदो देवो छिबाणो समुद्धय, वे देखे कि ये लोग नशा युक्त हैं, वे समझ गए इनके परिस्थितियों को। और जब नारद जी जब आ रहे थे तो स्त्रियां थी जो देवांगनाएं थी उन लोगों को थोड़ा लज्जा लगा। स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा और पुरुषों का आभूषण है शौर्य वीरता। जिस स्त्री में लज्जा न हो वो स्त्री नहीं है और जिस पुरुष में शौर्य न हो वीरता न हो, वीरता से ही हम भक्ति कर सकते हैं, शौर्य से नहीं, सॉरी वीरता से शौर्य से भक्ति कर सकते हैं। कोई भी काम करना होता है तो उसमें शौर्य चाहिए, करेज, अंग्रेजी में करेज चाहिए। स्त्रियों में आज जमाना बदलते जा रहा है, वो लोग लज्जा छोड़ करके करेज प्राप्त करना चाहती हैं लेकिन अंततः वो प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि उनके स्वभाव में ही नहीं है। लेकिन पुरुष जो हैं उनमें करेज इम्पोर्टेंट है। तो ये देवांगनाएं जब देखी नारद जी को तो नारद जी से भयभीत हो गई। गलती तो कर ही रही थी, जो गलत करता है उसमें भय होता है, यही है ना, भय है गलती के चलते। अदृश्यम भय कारणम, अदृश्य क्या हो सकता है, गलत करता है ऐसा क्या हो सकता है, वो भय का कारण है। जो गलती करता है भय होता है। तो ये लोग किस प्रकार से गलती कर रही थी, कई एक प्रकार गलती थी। एक तो व्यभिचार में पड़ी थी, दूसरे नग्न अवस्था में, तीसरी और तीसरे गंगा जी में मंदाग्नि में। तो इन्हें भय हुआ। तम दृष्टवा वृणतः देव्यो व्यस्त्रा सपसंगितः, श्राप से संगीत होकर के दुखी होकर के वे लोग तुरंत अपना कपड़ा पहनने लगे। शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुहकौ, लेकिन जो यक्ष के बिगड़े हुए संतान थे ये लोग नहीं पहने, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम्हें पहन लो, बदमाश के तुम क्या चिंता करती हो, ये बाबा है चले जाएंगे क्या करेंगे, चलो हम लोग को बिहार करना है। तो नारद जी इन लोगों को, इन पर कृपा करना चाहे कि ये देवता के बेटे हैं, कुबेर के बेटे हैं, बेचारे कुबेर कितना प्रयास करते हैं कि लोग पढ़ लिख लें कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन ये बदमाश लोग पढ़ाई छोड़ करके यह काम कर रहे हैं। तब नारद जी उन लोगों पर कृपा करने के लिए उन्होंने देख करके यद इमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमप्लुतौ न विवास न विवास सम आत्मानं विजानीतं सुदूरमदौ। नारद जी समझ गए कि देखो ये लोकपाल कुबेर के बेटे हैं लेकिन अभी इनका दिमाग ठीक नहीं है। विवास, वास मतलब कपड़ा, विवास मतलब नंगे, आत्मन अपने शरीर, शरीर पर कुछ भी धारण किए नंग धड़ंग ये लोग हैं। नारद जी समझ गए कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को। तब नारद जी उनको श्राप दिए, कहते हैं सुखदेव स्वामी कहते हैं अतः अर्हत अस्थावरतम अस्थावरताम स्यातः न एव यथा पुनः। अतः देयरफॉर, उसके बाद में नारद जी ने सोचा कि इन लोगों के लिए योग्य श्राप क्या होना चाहिए, योग्य दंड क्या होना चाहिए। तो नारद जी ने सोचा कि ये लोग नंग धड़ंग है, तो इन लोगों को ऐसा ही श्राप देना चाहिए। तो ये श्राप दिए उनके योग्यता के अनुसार, जैसा कर्म कर रहे थे जैसी योग्यता थी, नंग धड़ंग थे, इसलिए उन लोगों को उन्होंने श्राप दिया, अस्थावरताम स्यात्, तुम लोग वृक्ष जैसे गतिहीन हो जाओ, वृक्षवत्ता को प्राप्त करो। भगवत गीता में पहले एक फोटो हुआ करता था, आजकल विविड वाले निकाल दिए हैं, पता नहीं अभी भी होगा, कि चार प्रकार के पाप करने वालों का कैसा बाद में पूर्व, जो व्यभिचार करने वाले थे नंग धड़ंग, उनको वृक्ष का है, जो सुअर का एक में था, जो मांस खाने वाले थे उसमें सुअर का फोटो था, ये फोटो दिखाया जाता था। तो यहां पर कहते हैं अतः अरहतः, इसलिए तुम लोग योग्यता के अनुसार नंग धड़ंग हो, तो तुम लोगों को नंग धड़ंग शरीर मिलना चाहिए, और वह नंग धड़ंग जो शरीर है वह है वृक्ष का। कहते हैं स्या तुम लोग प्राप्त हो, न एव यथा अपमान, न मतलब नहीं, एव मतलब निश्चय ही, यथा जिस प्रकार से तुम लोग कर रहे थे पुनः मत बाद में, ताकि तुम लोग पुनः ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि तुम लोग वृक्ष बन जाओ। तो ये तो नारद जी का श्राप हुआ कि तुम लोग वृक्ष बन जाओ, लेकिन नारद जी सोचे कि ये लोकपाल के बेटे हैं, तो उन लोगों पर नारद जी ने एक अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? कहते हैं स्मृति श्यान मत प्रसाद न तत्रापि मत अनुग्रहात् वासुदेवस्य सानिध्यम लब्धवा दिव्य सरक्षते वृते स्वर्लोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। कहते मेरे अनुग्रह से श्राप दिए नारद जी कि तुम लोग वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, ये श्राप था, लेकिन नारद जी का अनुग्रह देखिए, ये अनुग्रह सब जो है ये केवल नल कुबर और मणिग्रीव पर ही नहीं है, ये नारद जी का अनुग्रह हम लोगों पर भी है। यदि नारद जी ये श्राप नहीं दिए होते तो क्या हम लोग कथा सुनते हैं? अनुग्रह कई एक प्रकार का होता है, कोई व्यक्ति दुखी होता है, भूखा होता है, कोई उसको भोजन दे दे तो अनुग्रह हुआ, जाड़ा का भी दिन है, कोई व्यक्ति जाड़े में ठिठुर रहा हो कोई कंबल दे दे तो अनुग्रह है। तो अलग अलग प्रकार से अनुग्रह होते हैं, भक्तों के लिए भगवान और भक्तों का अनुग्रह है कि हम भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो ये नारद जी का अनुग्रह है समस्त मानव जाति पर, सब पर ये अनुग्रह है, ये तो केवल माध्यम हुए हैं नलकुबर और मणिग्रीव, इन लोगों के माध्यम से नारद जी न उन पर ही केवल अनुग्रह किए बल्कि सब लोगों पर अनुग्रह किए, जिससे कि हम लोग ये कथा आज सुन सकते हैं, ये नारद जी का ही अनुग्रह है। तो कहते मेरे अनुग्रह से मेरे कृपा से दो बात नारद जी अनुग्रह के रूप में कहे, पहला बात कहे कि स्मृति स्या तुम लोगों की स्मृति बनी रहे। इसका भी दो कारण है, जब नारद जी श्राप दिए तो लोग डर गए, और डर कर क्या कर नारद जी से प्रार्थना करने लगे, गलती हो गया सॉरी बोलने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो नारद जी तो वैष्णव हैं ही, तो नारद जी पर कृपा हुई। इसे एक बात और सीखना चाहिए, कोई गलती कर देता है तो दंड ऐसे न दें कि उसे क्रैश कर दें, खत्म कर दें, हमें दंड देना चाहिए क्योंकि उसे दंड का भान हो जाए, लेकिन साथ साथ उसका आध्यात्मिक उन्नति भी हो। हम लोग कभी कभी जोश में अपना होश खो देते हैं, और नया नया मैनेजर का पोस्ट मिलता है, कहते हैं बदमाश है, खत्म कर दे इसको, कर्मी लोग यही करते हैं, सब लोग करते हैं ऐसा संसार में, लोग जो रास्ते में आए उसको खत्म कर दो। लेकिन वैष्णव लोग किसी को यदि श्राप दें तो या पुरस्कृत करें तो, दोनों प्रकार से लक्ष्य होना चाहिए लोगों को भगवान से जोड़ना। जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कैसे जोड़े। नारद जी से हम सीख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। नारद जी सीख सकते हैं, नारद जी कैसे इन नल कुबर और मणिग्रीव को भगवान से जोड़ रहे हैं। श्राप दिए, ठीक है तुम लोग वृक्ष बन जाओ, लेकिन साथ साथ उनको जोड़ने के लिए कहते हैं मेरे अनुग्रह से तुम लोगों की स्मृति बनी रहे। और ये देव पुत्र थे, इसलिए पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि दैवभूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च विष्णु भक्त अस्मृत चैव आसुर तत् विपर्यय। आसुर तत् विपर्यय, जो देवता और असुरों में अंतर क्या होता है कि देवता लोग निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वे लोग भगवान को भूल जाते हैं। वैसे ही जब जय और विजय को श्राप हुआ था तो भगवान ने उन लोगों को ऑप्शन दिया था कि तुम लोग मेरी स्मृति बनी रही तुम लोगों को तो 7 जन्म लेना पड़ेगा, और मुझे तुम लोग भूल जाओगे तो 3 जन्म में काम फ्री आ जाएगा तुम लोगों का। तो कहे कि भले 3 भले भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 3 जन्म जल्दी आना चाहते हैं। तब उन लोग की विस्मृति हो गई थी कि भगवान ही हैं, तब वे लड़ाई कर पाए हिरण्यकश्यप के रूप में, हिरण्याक्ष के रूप में, उस विस्मृत हो गए थे। तो देवताओं की भक्तों की स्मृति बनी रहती है, देवताओं की स्मृति बनी रहती है। इसलिए नारद जी 2 कारणों से इन लोगों पर श्राप तो दिए ही, लेकिन साथ साथ उन्हें 2 आशीर्वाद भी दिए, अनुग्रह भी दिए। अनुग्रह क्या था कि उनकी स्मृति बनी रहेगी, और दूसरा अनुग्रह था वासुदेवस्य सानिध्यम, भगवान वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। और जीवन के अंत में वे कहते हैं तुम लोग वृते स्वर्लोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यत, भविष्य में तुम लोग मेरे भक्ति को प्राप्त कर करके स्वलोक, स्वलोक का मोटा मोटी अर्थ है कि कुबेर का लोग अपने घर चले जाओगे। लेकिन श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं स्वलोक मतलब भगवान के लोक। और इसी आधार पर श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू को प्रारंभ किए, और गोपाल चंपू के दोनों जो कथाकार हैं स्तिग्नकंठ और मधुकंठ, ये दोनों कुबेर को दोनों बेटे हैं नलकुबर और मणिग्रीव। ये लोग भगवान के कथाओं को रिले किए हैं। तो कुबेर आत्मजौ बद्ध, कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तई ये दत्व, ये श्राप बस ये लोग बंध चुके थे वृक्ष जोनि में और कठपुतली के समान खड़े थे, मूर्ति के समान। मूर्तिमान कहते हैं कि जब कोई खड़ा है मूर्ति के समान क्यों खड़ा है, चला घूमो तो कम से कम। तो वृक्ष जो है मूर्तवत, और भगवान भी इधर बंधे हुए थे, दोनों बंधे हुए हैं। एक बंधे हुए हैं नारद जी के श्राप बस वृक्ष के रूप में, और एक बंधे हुए हैं घर में ही चोरी किए थे, दोनों गलती किए थे। और दोनों के बंधन का कारण है, एक का गलती दूसरा है, दूसरे गलती दूसरा है, लेकिन दोनों गलती किए हैं। अब दोनों मिल करके कैसे काम करेंगे आगे हम लोग सुनेंगे। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब श्राप हो गया नारद जी का तो उस समय प्रजन्य बाबा के पिताजी यानी नंद बाबा के पिता उनके पिताजी इन लोगों को नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों जुड़वे आए थे, जमल थे, जुड़वे थे, अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लिए, ब्रज में जन्म लिए। कितना सौभाग्य है नारद की कृपा से ब्रज में जुड़वे के रूप में जन्म लिए और बड़े सुंदर वृक्ष थे, बड़े सुंदर देखने में थे। यहां वर्णन किया गया है कि देवताओं के 100 वर्षों तक, तो मनुष्यों का 6 महीना देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। तो आप लोग जोड़ सकते हो कितना साल हुआ होगा, करीब 240 साल ऐसे कुछ। एनीवे, तो नंद बाबा के पिताजी ने लगाया था। कहीं अन्यत्र मैंने पढ़ा था कि नंद बाबा के पिताजी प्रजन्य बाबा लगाए थे इनको अपने, लेकिन जब नंद बाबा गोकुल सिटी को स्थापित कर रहे थे उस समय इस प्रकार से अपना घर बनाए कि घर के आंगन में ये दोनों हो गए। पहले कबूतर खाना में लोग नहीं रहते थे, कबूतर खाना समझते हो, कबूतर खाना नहीं जानते हो? हाँ, टीन का बनाते हैं ना, कबूतर बैठते हैं। तो आजकल शहरों में कबूतर खाना बनता है, अपार्टमेंट बनते हैं, आजकल वृंदावन में बन रहे हैं। पहले अलग अलग घर था, स्त्रियों के लिए अलग घर था, पुरुषों के लिए अलग घर था, और उतना ही नहीं घरों में आंगन हुए करते थे। देखो अपने कृष्ण बलराम जी का आंगन है, वहां तमाल वृक्ष है बीच में। तो ऐसे ही नंद बाबा के भवन अलग था और यशोदा मैया का भवन अलग था। जब वसुदेव जी लेकर के आए मथुरा से कृष्ण को, उतना जसोदा भवने, यशोदा जी के भवन में लाए थे, नंद भवन के नहीं। एनीवे, तो नंद बाबा के यहाँ आंगन में ये दोनों वृक्ष लगे हुए थे। भगवान वहां पर बहुत खेल खेले हैं उस नंद भवन में, उस आंगन में। रघुपति उपाध्याय चैतन्य महाप्रभु से नंद बाबा के आंगन के विषय में, यस्यालिंग परम ब्रह्मा, मैं तो नंद बाबा के को प्रणाम करता हूं जिनके कोर्टयार्ड में, जिसके आंगन में परम ब्रह्म ने लीला किया था, खेला था। ये जो नलकुबर और मणिग्रीव जमराज के पुत्र थे, सॉरी यक्ष के कुबेर के पुत्र थे और जेल में आज पड़ गए थे, इनकी स्मृति बनी हुई थी। कुबेर जी भी अपने दूतों को भेजते थे कि देखो मेरे बेटे सब ठीक तो है ना, वहां पर कोई काटा पीटा तो नहीं उन लोगों को ना, मान लो कोई जेल में चला जाता है तो हम लोग देखने कभी कभी जाते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं, कुछ भेजते रहते हैं। तो कुबेर जी भी कभी आते थे, कभी अपने दूतों को भेजते थे, और देखने में दोनों वृक्ष बड़े सुंदर थे ही। अब जितने ब्रजवासी लोग थे, ब्रज स्त्रियां जो थी वो आती थी, और नंद बाबा के आंगन में वृक्ष थे, देखने में बड़े सुंदर थे, तो स्त्रियों में थोड़ा अंधविश्वास ज्यादा होता है, लोग कहते हैं अंधमत का विश्वास से, तो वे लोग उस वृक्ष का पूजा करने लगे। और जिनको जो कामना था, ये कुबेर के बेटे थे ही, धन से क्या नहीं किया जा सकता है, तो वे लोग दूतों गए, देखो उनके घर में धन का तकलीफ है, व्यवस्था करा देना। तो घर में धन आता था, किसी के बेटे का शादी नहीं होता वही होता था, जो जो कामना करते थे सब प्राप्त होता था। तब चमत्कार को सब लोग नमस्कार करते हैं, तो और पूजा बढ़ना शुरू हो गया। अब खूब पूजा हो रहा था दो वृक्षों का, नलकुबर और मणिग्रीव का, और ये लोग ब्रजवासियों का खूब सेवा कर रहे थे, ये ब्रजवासी थे ना, उनका ये सेवा दोनों कर रहे थे। कितने ब्रजवासी लोग तो कामना किए कि नंद बाबा यशोदा मैया कितने दयालु हैं, इन्हें कोई संतान नहीं है, हे वृक्ष देवता गण यदि आप इन्हें कोई संतान दे दो। अब इनके पास वो तो शक्ति था नहीं, लेकिन ये भी भगवान के भजन में लग गए ताकि नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान उत्पन्न हो जाए। तो अब जब वो वृक्ष इतना पावरफुल था कि सभी ब्रजवासियों को जो कामना था वो आता था, अब नंद बाबा उन्हीं दो वृक्षों के नीचे बैठ करके फरियाते थे, कोई काम होता था ना, वो क्या पंचायती करते थे, गांव लोग बुलाना सब अच्छा से पंचायती होता था। तो इस प्रकार से वो वृक्षों का खूब पूजा होने लगा और इन लोगों को बड़ा भय लग रहा था कि अरे ये हमारे पूजा कर रहे हैं, तो ये लोग खुद सेवा करते थे। तो क्या सुंदर वहां पर कंपटीशन था, जो भगवान का सेवा, जो भक्तों का सेवा करता है उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती है। एक दिन भगवान जब छोटे बकैया चल रहे थे, घुटनों पर चल रहे थे, तो पहले जमाने में घर में चौकट लगता था, चौकट जानते आप लोग है, चौकट स्त्रियों को कहता था कि विवाह के बाद घर में आई और उसका केवल शरीर मृत्यु के बाद ही चौकट से बाहर जाएगा, यानी मतलब कि चौकट जो था वो लक्ष्मण रेखा है। तो चौकट जो नंद बाबा के घर का थोड़ा ऊंचा था, तो कृष्ण बेचारे चौकट पार नहीं कर पा रहे थे, उनके हाथ में मक्खन का गोला था। भगवान आ करके मानो वहां चौकट पर खड़ा होकर के एक हाथ से और मक्खन लेकर के दिखा रहे थे इन नलकुंवर और मणिगिरि को, कितना इनका सौभाग्य है नलकुंवर मणिगिरि को जो कि भगवान के हाथों से भगवान मक्खन मानो खिला रहे हैं। क्यों? कि ये नलकुंवर और मणिगिरि भगवान के भक्त ब्रजवासियों का सेवा कर रहे थे। उसको देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार से जब भगवान थोड़ा और बड़े हुए तो बच्चों को ले जा करके खेलना इत्यादि वहां पर एक करते थे। भगवान जब और बड़े हो गए, समय बीतते जा रहा है तो इसलिए आपको खत्म करना पड़ेगा, घड़ी सामने लगा दिया, अच्छा है। तो कुबेर आत्मजौ बद्धा मूर्तये दत्त्वं त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। भगवान ने दो काम किया, अपने बंधन में बंधे हुए थे और ए यक्ष के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव यही बंधन में बंधे हुए थे, ये वृक्ष के बंधन में बंधे हुए थे, वृक्ष के शरीर में, और भगवान उखल में बंधे हुए थे। तो भगवान घसीटते हुए उखल को लेकर गए, ऐसे लेकर गए कि दोनों वृक्षों के ये वृक्ष ऐसे थे तो मतलब कि चढ़ सकते थे उसके डाल पर। भगवान चढ़ गए और अब पार करना था, लेकिन बीच में वो उखल अटक गया। तो कभी कभी जोड़ लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान क्या किए, हाथ अपना नीचे रखे और पैर उन दोनों वृक्षों पर रखे जोड़ लगाने के लिए, लेकिन ज्यों ही भगवान के चरण कमल का स्पर्श हुआ इन वृक्षों पर इनकी मुक्ति हो गई, ये मुक्त हो गए। तो वही है, त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। हे प्रभु, आपने इन लोगों को मुक्त तो किया ही, लेकिन और क्या किया, भक्ति भाजौ, भाजौ मतलब पात्रता और भक्ति मतलब प्रेम, प्रेमा भक्ति का आपने इन लोगों को पात्र बना दिया, प्रेमा भक्ति को ये लोग प्राप्त किए। कृतौ च, आपने दिया, प्राप्त करा दिया। तथा प्रेम भक्ति स्वकामी प्रयक्ष। अब एक कामना है सत्यव्रत मुनि का, वे कह रहे हैं हे प्रभु, वही प्रेमा भक्ति तथा प्रेम भक्ति स्वकामी प्रयक्ष, मेरी भी वही कामना है, आप भी कृपा करके मुझे वैसा ही प्रेम देने का कृपा करें। तो कोई कह सकता है अरे मुक्ति अच्छा चीज है, मुक्ति ले लो, प्रेम क्यों लोगे, तो नहीं, जो भक्त होते हैं वे लोग भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवत सेवा चाहते हैं। भगवान की वाणी है जो कि दुर्वासा मुनि से भगवान ने कहा है, मत्सेवया प्रतीतम चम सालोक्य स्वालोक्य आदि चतुष्टयम् न इच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतो अन्य काल विद्रवत। जो मेरे भक्त होते हैं मेरे सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, चाहे उनको ये मुक्ति ही क्यों न दी जाए। यहां पर कहते हैं सालोक्य आदि चतुष्यम, चार प्रकार के मुक्ति, पांचवा का वर्णन नहीं करते हैं क्योंकि कैवल्य जो मुक्ति है भगवान में विलीन होने का वो तो नरक के समान है, लेकिन और जो चार मुक्तियां हैं वो भी नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं वे भगवान का भक्ति। इस संबंध में कई एक कि भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं कभी भी, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भक्तार भक्ति अहेतुके मम जन्मनि जन्म स्वरे, जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं चाहता, जन्म होता रहे। वैसे ही नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, कहते हैं नाना कपृष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत पाद रजो प्रपन्ना। नाग पत्नियां कहते हैं प्रभु न नाक पृष्ठम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, न च सार्वभौम न तो पूरे पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, न पारमिष्टम न तो ब्रह्म पद की इच्छा है, न रसाधिपत्यम न तो नीचे के रसातल इत्यादि का तल का, न योग सिद्धि अपुनर्भवम, या मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की सिद्धियां अपुनर मुक्ति भी नहीं चाहिए। यदि मैं चाहती हूँ हम लोग तो यतपाद रच प्रपन्ना, हम तो आपके चरण कमलों के रज में ही रहना चाहते हैं, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक वैसे हैं वृत्रासुर का भी प्रार्थना है लगभग ऐसे ही, न ना कपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जो योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत विरहय कांक्षे। ये कहते हैं मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए विरहय कांक्षे, आपके विरह में मैं तड़फता रहूं। संजोग और वियोग, भगवान से मिलन संजोग कहलाता है, संजोग में बिछुड़ने का भय बना रहता है और वियोग में मिलन की लालसा लगी रहती है। इसीलिए भक्त लोग वियोगमय भक्ति चाहते हैं, संजोगमय भक्ति नहीं चाहते हैं, विप्रलंभा यही चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदर यह दामोदर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, न मोक्ष मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए प्रेम भक्ति चाहिए। तो हम लोगों को भी ऐसे ही कामना करनी चाहिए, भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं, भगवान सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अपने को नहीं देंगे। यदि भगवान को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है तो यशोदा मैया के समान जिद से भक्ति करना पड़ेगा। यशोदा मैया जिद की थी कि आज मैं इसे पकड़ कर रहूंगी, यशोदा मैया ने जिद किया कि आज मैं इसे बांध कर रहूंगी, भगवान को भी हारना पड़ा यशोदा मैया के जिद के सामने। तो हम लोगों को जिद ठानना पड़ेगा कि हमें चार नियम पालन करना ही है, हमें मंगला आरती आना ही है, हमें भागवत कथा सुनना ही है, हमें कम से कम 8 घंटा कृष्ण का सेवा करना ही है। इस प्रकार से जिद ठान कर भक्ति करोगे तो कृष्ण हम सबके बंधुआ बन सकते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम लेजी बने रहेंगे तो प्रभुपाद जी के सोसाइटी में लेजी और क्रेजी लोगों के लिए स्थान नहीं है। जिद के साथ में भक्ति करो, हमें सत्संग करना ही है, जिद रखो, हमें प्रजल्प नहीं करना है, जिद करो। जिद समझते हैं सब लोग ना, जसोदा मैया जिद करके भक्ति की थी। एक महान भक्त कह रहे थे, कृष्ण का एक नाम है नंद नंदन, न द न, जो सब कुछ दे देंगे अपने को नहीं देंगे, वे हैं नंद नंदन। तो कृष्ण को प्राप्त करना है तो जिद करो, जिद से प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।